نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ تفسیر ان آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ السجدہ
ہم نے آیت نمبر 14 تک کیا تھا لاسٹ ٹائم, اور ہم پڑھ رہے تھے جہنم والوں کا ذکر, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا کہ وہ جہنم کو ایسے لوگوں سے جو نافرمان ہیں, جو کفر پہ ہیں, جو سرکشی کرنے والے ہیں, ان سے اور جنوں سے, ایسے جنات جو بھی, اس کا مطلب جنات میں بھی نافرمان ہوتے ہیں, کافر ہوتے ہیں, ان سب سے جہنم کو بھر دے گا, جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بھلا دے گا جس طرح انہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا. اب آتا ہے ذکر ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں پہ نافرمانوں کا یا جہنم کا ذکر آتا ہے, وہیں جنت کا ذکر آتا ہے, فرما برداروں کا ذکر آتا ہے, مومنوں کا ذکر آتا ہے, تو دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں. تو ایک چیز ہمیں اگر حوصلہ دلاتی ہے تو دوسری خوف دلاتی ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں, آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. یہ آیت جو ہم پڑھنے والے ہیں, آیت نمبر 15, بہت ہی زبردست آیت اس لحاظ سے ہے کہ اس کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, ہم ماننے والے ہیں, تو اب پتہ چلے گا کہ اصل میں ماننے والا کون ہے. کیونکہ جو ماننے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں, ماننے والوں کی جو صفات ہیں وہ بتائی ہیں یہاں پہ. تو اگر واقعی ہم ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر تو یہ صفات ہونی چاہیے, کہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ماننے والا ہو اور اس میں یہ صفت نہ ہو. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اسی کے تناظر میں اپنے آپ کو بھی دیکھیے, اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیجیے. انما یؤمنو بآیاتنا, بے شک ہماری آیات پر وہ ایمان لاتے ہیں. کون لوگ؟ میں اور آپ اس میں شامل ہیں یا نہیں؟ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں, الذین اذا ذکروا, کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے, بہا ساتھ اس کے, کس کے ساتھ؟ ان آیات کے جن کا ذکر ہوا ہے نا, بھی آیاتنا, ہماری آیات کے ساتھ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے. ذکروا کا میں نے آپ کو بتایا تھا دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے نا ذکر کا, یاد کرنا, ہم نے ذکر کا معنی پڑھا بھی, ذکر الہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد. ایک معنی یاد کرنا, یاد کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی بات بھول جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا معنی ہے ویسے ہی بیان کرنا, ذکر کیا اس نے, بیان کیا. تو ہم دونوں معنوں کے تناظر میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. نمبر ون چیز پہلے دیکھتے ہیں, یاد کرنا جبکہ بھول گیا ہو, ٹھیک ہے. تو اذا ذکروا بها, جب اس کے ذریعے, جب ان آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے, ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ خروا سجدا, وہ گر پڑتے ہیں. خروا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گر پڑنا, بے اختیار ہو کے گر پڑنا, سجدے میں گر پڑتے ہیں. وسبحوا, اور تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمد ربهم, ان کے رب کی حمد کے ساتھ. وہم لا یستکبرون, اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے. جب ایسے لوگوں کو جو کوئی بات بھول جائیں, اب دیکھیں بھول جانا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, کوئی بھی انسان بھول سکتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا کہے کہ میں عالم فاضل ہوں, لیکن بھول تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے. تو جب کوئی بھول جاتا ہے, اس کے دوست نے اس کو یاد دلایا یا کسی اور ساتھی نے اس کو یاد دلایا کہ بھائی دیکھو تم بھول گئے. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھے, کسی کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹا, اب وہ لگا ہے غلط باتیں کرنے اور گلے شکوے کرنے, ایک دم اس کے ساتھی نے اس کو یاد دلا دیا, تمہیں نہیں یاد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا. یوں ہی اس نے یہ بات سنی, اب دیکھیں ذہن سے کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا تھا, تو جو ہی اس نے یہ بات سنی تو اس کا رویہ کیا ہوا, रवैये अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताए। नंबर वन, खरू सुज्जदन, वो गिर पड़ते हैं सजदा करते हुए। यानी सजदा किस चीज की अलामत है? छोटा होने की, अपने आप को नीचा कर लेने की, फरमा बरदारी की, झुकने की। यानी फौरन झुक जाते हैं, ये नहीं कहते अब तुम्हें क्या पता, जितना गम हमें है ना तुम्हें क्या पता, तुम्हारे पर पड़ी होती तो तुम्हें पता चलता ना, बस करो अपनी नसीहतों को, ये नहीं करते, फौरन झुक जाते हैं। और वह सब बहु बेहमद रबीम, अपने रब की तस्बीह बयान करते हैं उसकी हमद के साथ। तस्बीह क्या होता है? यानी अल्लाह की पाकी बयान करना, उसकी तारीफ बयान करना, उसकी हमद बयान करते हैं। यानी आपने मुझे बात याद करा दी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ है, उसकी हमद है। और पाक तो सिर्फ अल्लाह ही है, हम तो भूल जाने वाले हैं, हम तो भूल जाया करते हैं। तो वो नसीहत को फौरन कबूल कर लेते हैं आयात की ताजीम में, क्योंकि वो आयतों को मानने वाले हैं ना, वो आगे से बहसे नहीं करते। अहम ला यस्तकबिरून, तकबुर नहीं करते कि तुम कौन होते हमें बताने वाले। तकबुर क्या है? अपने आप को, अपनी अकल को, अपनी समझ को ज्यादा ऊपर समझना। तो वो ये नहीं करते कि अपने आप, अपनी समझदारी में वो इतने अपने आप को बहुत अकल वाले समझे, बहुत समझ वाले, कि हमें कोई नसीहत ना करे। भाई हमें तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, हमें कौन बताएगा, और चलो चलो अपना काम करो। नहीं, जो ही बात सामने आई फौरन झुक गए, क्योंकि जिसमें तकब्बुर होता है ना वो झुक नहीं सकता। तो तीन चीजें वो करते हैं, जब उनको नसीहत की जाती है सजदे में गिर पड़ते हैं, झुक जाते हैं, यानी तस्बीह करते हैं और अकड़ते नहीं, तकब्बुर नहीं करते। अब आप देखें, पिछली आयत में आपने पढ़ा था ना, क्या हमने पढ़ा था कि वो वहां पे जाके न कि सूरु उसीहिम अंदर रब्बीहिम, आयत नंबर 12 में था ना, जब मुजरिम क्या करेंगे जब अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, तो अपने चेहरों को, अपने सरों को झुका देंगे उसके पास। वो आखरत में जाके झुके, ये दुनिया में ही झुक जाते हैं। कितना फर्क है ना, झुकना तो पड़ेगा ही अल्लाह के सामने, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो वहां जाके झुकेंगे जब वो सब कुछ देख लेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की आयात सुन के दुनिया में ही झुक जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि अपनी गलती के ऊपर अकड़े रहें, वो ये नहीं कहते कि जो हमने किया बस वो ठीक है, वो आजी का इजहार करते हैं, वो अपनी कमी का इतराफ करते हैं। देखिए सब्बाहू में क्या है, जब अल्लाह की पाकी बयान की तो अपनी कमी का इतराफ कर लिया, मैं गलती पर हूं, अल्लाह ही पाक है। जब सजदे में भी क्या है, इंसान झुक गया, वो इस चीज के ऊपर जिद में नहीं पड़ गया कि नहीं जो मैंने चीज की है वो ही सही है, कि जब उनको याद करवाया जाता है, भूल हर एक से हो सकती है, लेकिन जो कोई भूल जाए तो ये नहीं कहना चाहिए बड़े इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है देखो अब ये कर रहे हैं। नहीं, आप उसको याद दिला देना, आपका काम क्या है, याद दिला देना, याद दिहानी कराना। जो अल्लाह की आयात पर ईमान रखने वाला होगा ना, इस कुरान पे ईमान रखने वाला होगा, देखिए अब आप ये सोच लें कि जब हमें कोई नसीहत करता है, हमें कोई याद दिलाता है, तो हमारे रवैये क्या यही होते? अगर हमारे रवैये ऐसे नहीं होते और हम उसी के पीछे पड़ जाते हैं, तुम कौन होते हमें याद दिलाने वाले, या हम आगे से एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, या आगे से और अकड़ जाते हैं, या तुम्हें ज्यादा पता है, मेरी जितनी समझ है, मेरा जितना इल्म है, तुम अब मुझे समझाओगी, अगर ऐसे कहने लगते हैं, इसका मतलब है कुरान के ऊपर ईमान नहीं है। देखिए सहाबाए कराम का क्या तर्ज अमल होता था, कि हजरत उमर रजील तला जब एक दफा मजमे में, जब मजमे में खड़े होकर बात कर रहे थे, तो फरमाया कि औरतों का मेहर कम कर दिया जाए, इतना ज्यादा मेहर ना दिया जाए। तो उस वक्त एक औरत खड़ी हुई और कहने लगी, उमर तुम्हें क्या हक है कि औरतों का मेहर कम करो, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर तुमने उनको खजाने भी दिए हुए तो तुम वापस ना लो, तो इसका मतलब इतना कुछ दे सकते हैं ना, तो तुम कौन होते हो कि जो है ना तुम इसमें कमी करवाओ। हजरत उमर खलीफा वक्त थे, उस वक्त क्या कह सकते थे कि औरत तुम कौन होती हो कि मुझे कहने वाली है, और तुम्हारा इल्म कोई मुझसे ज्यादा है। आगे से फरमाने लगे, इस शहर में तो सभी उमर से ज्यादा फकीह हैं, यानी ज्यादा समझदार हैं। जब हजरत उमर को कहा जाता था कि उमर अल्लाह से डरो, तो अपना गाल ये अपना चीख जो है ना जमीन पे रख देते थे और कहते थे वाकई उमर को अल्लाह से डरना चाहिए। वो लोग ये नहीं कहते थे कि तुम कौन होते हमें कहने वाले, तुम खुद जाकर डरो ना, बहुत ही हम इन बहुत ज्यादा नसीहतें करने की जरूरत नहीं है, चलो अपना काम करो, ये नहीं कहते थे। अशरा मुबशरा में से हैं और रियाया में से एक औरत खड़ी होकर कह रही है, या कोई अवाम में से एक बंदा खड़ा होकर कह देता था कि उमर अल्लाह से डर। लेकिन हमारे अंदर चूंकि तकब्बुर इतना भरा होता है, हम किसी की बात को नहीं सुनना चाहते। हमें कोई कोई नसीहत करे कुरान की किसी आयत को लेके हमें बताए कि देखो ये कहा है अल्लाह ताला ने, हम क्या करते हैं? अल्लाह ताला तो चाहता है कि हमारे अंदर से तकब्बुर खत्म हो जाए, हम ऐसे ही ईमान लेकर आए कि अपनी बड़ाई लूज कर दे, अपनी बात नहीं अल्लाह की बात चलेगी। लेकिन हमसे हमारी मैं नहीं जाती ना, जहां कोई कोई नेकी का काम करता है, कोई कुछ अच्छा काम कर लेता है, कहता है मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना काम किया, वो तो अल्लाह तक पहुंचेगा ही नहीं काम, वो तो मैं में ही रह गया। क्योंकि जो इंसान अल्लाह से ताल्लुक रखता है और जिसमें तकब्बुर नहीं होता ना, वो तो शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ने मुझसे करवा लिया, वो ये नहीं करेगा मैंने किया, मैं ही इस काबिल था, मैंने ये नहीं, या अल्लाह तूने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ये नेकी ले ली, ला मैं तो इस काबिल भी ना थी। चाहे छोटा काम हो या बड़ा, खुद को देखें। कोई छोटा सा काम हम कर लेते हैं तो दूसरों को क्या हम कहते हैं, ये मैंने किया, ये मैं हूं, ये मैंने इतनी मेहनत की है इस पे, मैंने इतने दिन लगाए, इतने दिन से मैं इस पे वर्क कर रही हूं। हालांकि करने वाली जात कौन सी है? अल्लाह की। तो अल्लाह का तो वही पा सकता है जो अपनी बड़ाई छोड़ देता है, अपनी बड़ाई को लूज कर देता है। तो उसने लूज क्या किया? मैं। और उसने पाया क्या? अल्लाह को। इतनी सी अपनी हकीर सी हस्ती को छोड़ के जहानों के बादशाह के साथ ताल्लुक कायम हो गया, कितना फायदे का सौदा है ना। लेकिन हम अपनी बड़ाई नहीं छोड़ते, सब चीजों के पीछे देख लेना अगर, तो हमारी अपनी बड़ाई, हमारी अना, अना को इसीलिए अना कहते हैं ना, मैं अरबिक में मैं को क्या कहते हैं, अना, वो अना ही है वाकई, मैं मेरा, रब की बड़ाई तो याद ही नहीं रहती। वैसे तो हम सब कहते हैं हमारा ईमान है कि अल्लाह के बगैर कोई काम नहीं होता, कहते हैं ना, सब मानते हैं इसको, मगर काम करते वक्त क्या नजर आता है हमें? अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत, अपनी दिन रात की कोशिश, अपना इल्म। तो जिसको ये याद रहता है ना, वो अभी अपनी मैं से नहीं निकला। ऑन द अदर हैंड, अगर काम करते वक्त रब की बड़ाई याद रहती है, उसका एहसान महसूस करते हैं आप, तो यही रब को पा लेना। और जिस जो रब को पा लेते ना, उसमें चेंज आ जाती है। क्या चेंज आती है? वो आजिज हो जाता है, इसलिए कि वो उसको हर चीज लगती है कि ये तो मैंने नहीं किया, ये भी रब ने करा लिया, ये भी अल्लाह ने मुझसे करा लिया, वो भी अल्लाह ने मुझसे करा लिया, इसकी भी अल्लाह ने ही तौफीक दे दी। वो फिर और आजिज हो जाता है और रब के सामने झुक जाता है और मिस्कीन हो जाता है कि मेरी क्या हकीकत, मेरी कोई ताकत थी, ये मेरा कोई पैसा था, ये तो सब रब ने ही दिया हुआ। फिर वो थकता भी है तो रब को पाता है, थकता है तो सोचता है मुझे तो थकावट महसूस होती, मेरे रब को तो थकावट भी नहीं होती। वो रात को नींद से बेहाल होता है तो उसमें भी रब को पहचानता है कि देखो लाता अखुदुहु सीना तुम वाला नौम, उसको तो नींद भी नहीं आती। वो उठता है दिन को तो तब भी उसको जहन में ये बात आती है कि उसने ही जिंदा किया मुझे। तो उसकी अपनी मैं तो कहीं खत्म ही हो जाती है, सब चीज रब के हवाले किए हुए होता है। तो जो लोग आप देख लें, आपको बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द भी ऐसे नजर आएंगे और अपनी जात में भी हम जान के कि सब मुसलमान होते हुए ये ईमान रखते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और हम इन आयात पे ईमान लाए, हम इनको मानते हैं, لیکن کیا وجہ ہے کہ ایمان والوں کی تو یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں اور ہمارے اندر تو یہ خصوصیات نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہ کراؤ بلکہ بھولا رہنے دو. کوئی کوئی غلط کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھولا رہنے دو, کسی نے یاد کرا دیے تو اس کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے یاد کرائے, بجائے اس کے کہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے اس کی تسبیح کے ساتھ اور تکبر نہ کرتے. تکبر جب انسان چھوڑ دیتا نا تو وہ خود بخود جھک جاتا ہے, اور جس میں تکبر ہو وہ کہاں سے ہدایت پا سکتا ہے. جو اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہے, خود سوچے نا, جو خود کو بڑا سمجھ رہا ہے, خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو, اپنے علم کو, وہ کہاں کسی کی رائے سمجھے گا, وہ کہاں کسی کو یہ موقع دے گا کہ آپ کچھ بول سکے. تو ایک تو یہ یاد دہانی کے کانٹیکسٹ میں بات آ گئی ذکیرو میں. دوسری ہے بیان کرنا. کسی کے سامنے بھی اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو جو واقعی ان پہ ایمان لانے والا ہے, ویسے کسی کو بتائی جائے تو جو ماننے والے ہیں نا, جو ایمان لانے والے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جب آیتیں سن لیتے ہیں تو فوراً آگے جھک جاتے ہیں. وہ آگ بگولا نہیں ہو جاتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی ایکسکیوزز دینے لگے, بحثیں کرنے لگے. مثلاً کسی کو آپ نے بیان کیا, اس کو پہلے بھی نہیں پتا تھا, آج فرسٹ ٹائم اس کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح پردے کے یہ احکامات ہیں, تو یہ وہ یہ نہیں کہتے لو آج کے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے, لو یہ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو, لو تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں نہیں پتا, اور آرگیومنٹ شروع کر دیں. نہیں, اگر وہ نہیں بھی کر پاتے تو وہ آرگیومنٹ نہیں کرتے, وہ جھک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی میں نہیں کر پا رہی, لیکن اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. وہ تکبر نہیں کرتے. آپ نے کہا یہ, ہم نے پیچھے پڑھا میوزک کی بات کے اوپر, ساری بات آئی تھی لاحول حدیث پہ. تو کیا تھا, جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو, جب بیان کیا جاتا ہے ان کے سامنے, تو کیا لوگ بحثیں کرتے ہیں, یا اس کو جو چیز اللہ نے حرام کی اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آگے جھک جاتے ہیں, جھکنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ ماننے والے تو جھک جایا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو غلطی بتائی جائے تو کیا رویہ ہوتا ہے, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کیا ہمارا رویہ ہوتا ہے, جھکتے ہیں یا اکڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں یا عاجزی کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں اور آج کیا ایسے چل سکتا ہے, لو سود تو وہ والا بھی سود وہی تھا اور وہ تو سود ڈفرینٹ تھا اور آج تو ڈفرینٹ ہے, اور ایسے کیا یہ تعویلیں کرنے لگتے. تو جو اللہ کا کلام اس کی طرف سے مانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, کیا وہ اس طرح کی بحثیں کر سکتا ہے پھر؟ تو واقعی ایمان والا تو وہی ہے جو اپنی غلطی کو مان جائے اور جھک جائے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے, اپنی عقل کو بڑا نہ سمجھے, اللہ کی بات کو بڑا سمجھے, چاہے وہ بات اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری پسند ناپسند کچھ اور ہوتی ہے, ہماری مرضیاں کچھ اور ہوتی ہیں, اللہ کا حکم کچھ اور آ جاتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم مان گئے نا تو ہمیں کرنا پڑے گا, لوگ کہیں گے دیکھو ماننا بھی ہے اور پھر کرتی بھی نہیں ہے, تو اس لیے ہم آگے سے بحثیں کرتے ہیں. بحث کبھی نہیں کرنی, کبھی آرگیومنٹس نہیں دینے, کبھی ایکسکیوزز نہیں دینے, کبھی بہانے نہیں کرنے, فوراً اپنی غلطی مان جائے. نہیں, واقعی اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ کہا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, ہم مان گئے, یہ کہیں فوراً. جب آپ ایسا نہیں کہتے نا تو اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں پھر, اور جب اللہ توفیق چھین لے تو پھر وہ انسان کبھی عمل نہیں کر سکتا, واقعی وہ عمل نہیں کر سکتا. تو فوری طور پہ یہ کہنا چاہیے, اگر آپ اسی وقت نہیں بھی کر سکتے تب بھی کبھی انکار نہ کریں, کبھی تکبر نہ کریں, کبھی نہ اکڑیں اللہ کے حکم کے آگے. نہیں بھی کر سکتے تب بھی کہیں کہ میں نے مان لیا, ये अल्लाह की तरफ से है, मैंने मान लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने मान लिया। कई चीजें आप पढ़ते होंगे जो आपको लगती होंगी कि नहीं ये तो नहीं ऐसे होना चाहिए, और ये दिस इज नॉट फेयर, पता नहीं क्या क्या ऐसे नाउजुबिल्ला जहन में ख्यालात हो सकता है आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अपनी समझ अकल और जस्टिफिकेशंस को एक तरफ रख के अल्लाह के हुक्मों पे लब्बाई करें, समय ना वाता ना करें। तो जो ईमान रखता है वो फिर कहता है जो अल्लाह ने कह दिया मैंने मान लिया, मेरी अकल का ही कोई कसूर होगा कि मुझे नहीं समझ आ रही। अल्लाह की बात जो गलत नहीं हो सकती उसमें जरूर कोई हिकमत है, अगर मैं नहीं समझ पा रही तो मुझे ही नहीं आता होगा, मुझे अपनी अकल पे मातम करना चाहिए, मेरी अकल की कमी है, मैं खुद को बदल लूंगी, मुझे अल्लाह तौफीक दे दे, वो ये कहते हैं। तो हम खुद ही रवैया अपने देखें कि हम क्या कहते हैं जब अल्लाह की बात सामने आती है। अच्छा कई लोग तो माशाल्लाह वो इतने होते हैं कि जब उनके सामने बयान किया जाता है ना तो वो कहते हैं हमें तो पहले ही सब कुछ पता है, हमें पहले ही सब कुछ पता है, हमें क्या बता रही है, हमें बताने की जरूरत ही नहीं। ये भी तकब्बुर है, ये भी एक तकब्बुर की किस्म है कि हमें ऑलरेडी मालूम सब कुछ पता है, हालांकि पूछा जाए कि आपने कितना पढ़ा, कितनी दफा पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा कभी, बस हमें बचपन से पता है, ये तो सारा कुछ हम पहले ही जानते हैं। यकीन करें कि इतनी बार भी इंसान कुरान पढ़े ना तो हर दफा पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि पहली दफा ही पढ़ रहे हैं, नई चीजें याद होती, कई दफा जहन से निकल जाती हैं, और कुरान तो ऐसा मौजजा है कि हर दफा पढ़ते हैं हर दफा नई चीज सामने आती है। तो जो कहता है कि हमें सब कुछ पता है वो सबसे बड़ा जाहिल है, क्योंकि उसको वाकई कुछ भी नहीं पता। अगर उसको कुछ पता होता तो उसको पता होता कि ये ऐसा समंदर है जिसकी आप डेप्थ तक पहुंच ही नहीं सकते, कैसे आपको सब कुछ पता हो सकता है। मगर देखें तकब्बुर की कैसी कैसी किस्में हैं लोगों में। तो जब वो अल्लाह की आयात पर ईमान ले आते हैं, झुक जाते हैं, गिर जाते हैं बेख्तियार होके, अल्लाह को बड़ा मान लेते हैं कि वो पाक है, और फिर उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसकी बात को मान जाते हैं, आगे से एक्सक्यूजेस नहीं देते, ऐसे लोग ही हैं जो अल्लाह के कलाम पर ईमान लाने वाले हैं, जो खुद को छोटा कर लें कि मैं छोटा हूं और अल्लाह ही की बात बड़ी है। तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदौजिए, फिर वो लोग कैसे हो जाते हैं जो अल्लाह की आयात को मानने वाले होते हैं ना, फिर उनका हाल ये होता है कि अलग रहते हैं उनके पहलू उनके बिस्तरों से। फिर वो रात को सारी सारी रात पड़े सोए नहीं रह सकते, वो ऐसे आजिज होते हैं, उनका रब से ऐसा ताल्लुक हो जाता है कि वो रब को पुकारते हैं रातों को। आप देखें जिसके साथ आपको बड़ी मोहब्बत होती है आपका क्या दिल चाहता है कि मैं इसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करूं, ऐसे होता है ना जब कोई भी ना हो उस वक्त मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो रात का टाइम ऐसा होता है जिसमें आप और आपका रब, आप अकेले बिल्कुल तन्हाई में खामोशी में अल्लाह ताला से वो बातें कर सकते हैं जो दिन के शोर शराबे में नहीं कर सकते। तो वो एक टाइम वन टू वन का टाइम है। ऐसे लोग रातों को अपने बिस्तरों पर करवटें बदलते हैं, इनके पहलू अपने बिस्तरों से अलग रहते हैं, यानी बिस्तर से उठ जाते हैं, और यदउना रब्बहुम खौफा मुतमा, और वो पुकारते हैं अपने रब को खौफ से और उम्मीद से। खौफ किस चीज का, जब अपने गुनाहों की तरफ देखते हैं तो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और उम्मीद किस चीज की, जब अल्लाह की रहमत की तरफ देखते हैं तो उम्मीद होती है। और खौफ किस चीज का, इस बात का कि अल्लाह ताला मुझसे पूछ करेगा, मुझसे सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगी। और उम्मीद किस बात की कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो यकीनन माफ कर देगा। उम्मीद इंसान को मायूस नहीं होने देती और खौफ इंसान को नडर नहीं होने देता, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जानों पे भी अपना हक नहीं समझते। देखें जो अपनी जान पे अपना हक समझता है वो तो कहता है मैं कैसे उठूं, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होगी, मेरे तो कल के काम ही इतने, फिर सुबह कामों में हरज होगा, ये होगा वो होगा, वो उठ ही नहीं सकता। जो सोचता है कि मेरी जान पे भी मेरे रब का हक है, ये भी रब की अमानत है, वो रात को उठता है और रब के हजूर खड़ा होता है, तो ये सारी रात नहीं सो पाते, अपनी नींद को भी अपने रब के लिए कुर्बान कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद वो है जिसने इशा की नमाज जमात के पास साथ पढ़ी, उसने गोया निस्फ रात की तक कयाम की, और जिसने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसने गोया कि सारी रात कयाम की। यानी इससे मुराद वो भी लोग हैं जो इशा और फजर जमात के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको फिर पूरी रात के कयाम का अजर मिलता है, पूरी रात नमाज पढ़ने का। कम ही लोग इस चीज का एहतमाम करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के रोजे हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दो आदमियों को बहुत पसंद फरमाता है, एक वो जो अपने बिस्तर और लिहाफ से निकल के महबूब बीवी बच्चों को छोड़ के नमाज को खड़ा होता है। आप देखिए नरम बिस्तर है, पहलू में बीवी सोई हुई है, उन सब को छोड़ के और अल्लाह के आगे खड़ा हो जाए, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं मेरे बंदे को देखो अपने बिस्तर के अंदर से निकल के अपनी महबूब बीवी और बच्चों को छोड़ के मेरे सवाब की उम्मीद में और मेरे अजाब से डर के उठ खड़ा हुआ है। तो एक तो वो आदमी है और दूसरा वो आदमी है जो अल्लाह की राह में लड़ता है, फिर शिकस्त पाकर अपने साथियों के साथ भाग खड़ा होता है, फिर फरार की हालत में इसको ख्याल आता है कि जिहाद से भागना कितना बड़ा जुर्म है, और वो लौट के जिहाद में शरीक हो जाता है कि ये कितनी बड़ी नेकी है, तो आता कि वो शहीद हो जाता है। तो अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से कहते हैं कि मेरे बंदे को देखो किस तरह वो मेरे सवाब की तलब में और मेरे अजाब से डर के जिहाद की तरफ लौट आया, यहाँ तक कि उसका खून बहा दिया गया। तो ये दो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। अगर देखा जाए बहुत आसान काम है, कोई लड़ना नहीं पड़ रहा, कोई आपको खून नहीं बहाना पड़ रहा, कोई आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, नींद की कुर्बानी है, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यही चीज कभी इतनी मुश्किल हो जाती है, ऐसी मुश्किल हो जाती है कि इंसान कहता है कि ये काम नहीं हो सकता, बिस्तर को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, हत्ता कि फजर भी कभी चली जाती है तो तहज्जुद का तो सवाल ही क्या है। तो जो अपनी फर्ज नमाज को पक्का कर चुके हैं, तो फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज ये तहज्जुद की नमाज है। एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का शेर था जिसका तर्जुमा यह है कि हम में अल्लाह के रसूल हैं कि सुबह को पौ फटने के वक्त वो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, हमारे अंधेपन के बाद उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमारे दिलों को यकीन है कि जो कुछ उन्होंने फरमाया वो सच है, वो रात को अपना पहलू बिस्तर से जुदा रखते हैं, जबकि काफरों के बिस्तर काफरों के बोझ से बोझल पड़े रहते हैं। तो काफिर हैं जो सारी रात ही सोए पड़े रहते हैं, और देखें कैसे शेर के अंदर ये बात बताई गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त उठ के नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह ताला ने भी फरमाया ना कुमिल लैली इल्ला कलीला, उठे रात के बाद थोड़े देर के लिए। तो रात की जो नमाज है इसकी इंतहाई फजीलत है। नहीं, एक जगह पे ये आता है एक हदीस में कि कयामत के दिन जब अव्वल आखिर सब लोग मैदाने महशर में जमा होंगे, तो एक फरिश्ता निदा देगा, आवाज बुलंद करेगा जिसे तमाम मखलूक सुनेगी, वो कहेगा आज सबको मालूम हो जाएगा कि सबसे ज्यादा इज्जत वाले अल्लाह के नजदीक कौन है, फिर लौट कर आवाज लगाएगा तहज्जुद गुजार लोग उठ खड़े हों, और इस आयत की तिलावत फरमाएगा, तो ये लोग उठ खड़े होंगे और ये गिनती में बहुत कम होंगे, सुभान अल्लाह, ये बहुत थोड़े लोग होंगे। तो पता चला कि अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाले कौन है। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद गुजारों में शामिल फरमाए। तो एक तो मैंने आपको बताया कि इसका तर्जुमा तहज्जुद का, और दूसरा ईशा और फजर जमात के साथ पढ़ने वाले का भी ये बताया गया कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बा जमात ईशा और फजर की नमाजों के सवाब से लोग वाकिफ हो जाए, उनको पता चल जाए, तो वो सिरिनों के बल घिसट घिसट के पहुंचे, पेट के घर बल भी घिसट घिसट के पहुंचे, इतना ज्यादा अजर है इसका। लेकिन देखें ये नमाज शैतान हमारे पर ऐसी भारी कर देता है, क्योंकि ये भी हदीस में है ना कि जब तुम में से कोई शख्स सोया हुआ आता है तो शैतान उसकी बुद्धि के ऊपर 3 गिरे लगा देता है, हर गिरा पे ये फूंक मार देता है कि रात बहुत लंबी है, सो जाओ, सोए रहो सोए रहो, हर गिरा पे ये फूंक मारता है। अगर वो उठ जाता है और अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी एक गिरा खुल जाती है। कभी कभी बिस्तर पे लेटे लेटे ही हम जिक्र शुरू कर देते हैं ना, आंख खुली और जिक्र शुरू कर दिया तो एक गिरा खुल जाती है, अगर वो वजू करे तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और अगर वो नमाज पढ़ ले तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है, और वो सुबह को तरोताजा हो जाता है। तो ये शैतान गिरे लगाता है वाकई। तो इससे ये तरीका शुरू में आप करें कि थोड़ी सी शुरू करें, जैसे 15-20 मिनट पहले, फजर से पहले उठ जाएं और उस वक्त नमाज पढ़ें, 2 रकत पढ़ लें बेशक, तो जरूरी नहीं कि आपने कोई 8 ही रकत पढ़नी हो, मगर स्टार्ट में आप, क्योंकि वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 रकत, पहली 2 रकत होती थी ना वो हल्की पढ़ते थे, उसके बाद फिर जितनी मर्जी लंबी पढ़ें, तो पहली 2 रकत तो वैसे भी हल्की है, तो वो 2 रकत पढ़ें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते रहें, 4 कर लें, 6 कर लें, 8 कर लें, लंबी रकात पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला तहज्जुद गुजारों में तो शामिल हो जाएंगे ना। चलो उंगली कटा के ही शहीदों में नाम लिखवा लें हम, कि ज्यादा नहीं तो कम से कम हमारा नाम उस लिस्ट में तो आ जाए कि ये भी तहज्जुद गुजार है। तो ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की सिफात हैं जो कि अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हैं, फिर वो रात को पूरी रात नहीं सो सकते। देखिए जब अल्लाह की आयात जो है ना वो दिल पे पड़ती है ना, तो ये सब दिल की सख्तियां भी दूर हो जाती हैं, तकबर भी दूर हो जाते हैं, फिर अल्लाह के लिए उठना भी आसान हो जाता है। और अल्लाह को पुकारते हैं किस तरह, खौफ से और तमा से। मैंने आपको बताया कि खौफ और तमा दोनों ही जरूरी हैं। एक चीज कई उलमा कहते हैं कि खौफ ज्यादा होना चाहिए जिंदगी भर। वो किस सूरत में कहते हैं, यानी हम देखते हैं ना, जब दोनों चीजें देखते हैं तो हम सोचते हैं हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए ज्यादा, खौफ भी और उम्मीद भी, इन दोनों के दरमियान ही ईमान है। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है ना, तो अब हमें क्या होना चाहिए, खौफ ज्यादा होना चाहिए या उम्मीद ज्यादा होनी चाहिए? तो बाज़ उलमा ने जिन्होंने खौफ को कहा कि ज्यादा अफजल है, वो क्या कहते हैं, क्या दलील देते हैं, कि वो कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया ना, रदी अल्लाह अन्हु व रदु अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, ये उसके लिए सूरह बय्यना में ना कि अल्लाह उनसे राजी हो, वो अल्लाह से राजी हो, ये इसलिए कि वो अपने रब से डरा करते थे। और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के डर से बंदे की खाल पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो पता है क्या होता है, कभी आपके रोंगटे खड़े हुए हैं कि अल्लाह का खौफ इतना आया हो कि जुर्जरी सी आ गई हो, चिल हो गई हो, जिस्म में एक चिल सी दौड़ जाती है ना, पता है इसका कितना बड़ा रिवॉर्ड है? इसका रिवॉर्ड ये है कि उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे आंधी में दरख्त के खुश्क पत्ते झड़ते हैं। आपने देखा होगा फॉल में किस तरह होते हैं, कैसे पत्ते गिरते हैं, कितने ढेरों पत्ते गिरे होते हैं, इस तरह से उसके गुनाह झड़ते हैं। और एक और हदीस में कि अल्लाह ताला उस पर कभी नाराज नहीं होगा जिसमें खौफ है। तो हमें तो हर वक्त ये फिक्र रहती है ना अल्लाह नाराज ना हो जाए, तो जो डरता रहता है ना उससे अल्लाह कभी नहीं नाराज होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मैं बंदे पे 2 खौफ जमा नहीं करूंगा और ना 2 अमन जमा करूंगा। क्या 2 खौफ है, कि अगर दुनिया में वो मुझसे बेखौफ रहा तो क्यामत में उसको खौफजदा करूंगा, और अगर दुनिया में मुझसे डरा तो क्यामत में उसको अमन दूंगा। दोनों जगह आप बेखौफ नहीं हो सकते, अगर दुनिया में बेखौफ रहे तो वहां पे डरना होगा, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी कि इंसान डरेगा, और अगर यहां पे डर गए तो इंशाल्लाह वहां पे अमन होगा। तो ये नहीं हो सकता दुनिया में भी डरे आखरत में भी डरे, या ये भी नहीं हो सकता कि दुनिया में भी बेखौफ रहे और आखरत में भी बेखौफ रहे, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो आप चूज कर सकते हैं, यहां आपने बेखौफ रहना है या वहां बेखौफ रहना चाहते हैं, कहां डरना चाहते हैं, ये ना समझिएगा कि यहां मजे से रह रहे हैं वहां पे भी मजे से ही रहेंगे। ऐसे ये फैसला करना है कि कहां पे डरना है और कहां पे अमन में रहना है। तो खौफ और उम्मीद दोनों ही चीजें जरूरी हैं, दो मेडिसन्स हैं समझ लें, जिनसे दिलों का इलाज होता है। अब डिपेंड करता है कि बीमारी कैसी है, अगर किसी को अल्लाह की पकड़ से बेपरवाही है तो फिर खौफ ज्यादा उसको दिलाना चाहिए, खौफ अफजल है फिर। अगर किसी में फिक्र ही नहीं है अल्लाह की पकड़ की, हिसाब किताब की, जैसे हम आजकल लोग हैं कि फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं, बस फौरन कह देते हैं अल्लाह गफूर रहीम है और चलो जी बात खत्म हो गई। इसी तरह उलमा कहते हैं अगर इंसान पे नाफरमानी ही गालिब है, वो नाफरमान ज्यादा गुनाह पे गुनाह कर रहा है, तब भी खौफ अफजल है, खौफ दिलाना चाहिए। लेकिन अगर मायूसी है, नाउम्मीदी है, किसी में डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर उसको उम्मीद दिलाएं, ठीक है। तो लेकिन दोनों ही चीजें जरूरी है ना, अगर इंसान इतना खौफजदा हो जाए, इतना खौफजदा हो जाए कि वो कुछ कर ही ना सके, वो कोई अमल ही नहीं कर सकता, और वो कहे कि अब तो सारा कुछ खत्म हो गया, बस ठीक है जब जहन्नुम में जाना ही है और मुझे तो पता चल ही गया मैंने जहन्नुम में जाना है, तो अब क्या फायदा कुछ करने का, तो जाहिर है वो ऐसा खौफ बेफायदा है, ऐसे खौफ की जरूरत नहीं है। ऐसा खौफ जो है ना फिर इंसान को जो बेअमल कर दे तो वो खौफ बुरा है। और ना ही उम्मीद ऐसी होनी चाहिए कि आप कहें कि मैं जो मर्जी करती रहूं अल्लाह ताला ने तो माफ कर ही देना, मुझे कोई परवाह ही नहीं है, वो भी गलत है। और दोनों चीजें अगर एक्सट्रीम पे, यानी खौफ एक्सट्रीम पे चला जाए, इंसान से कोई काम ही ना हो सके, वो भी गलत है, और उम्मीद भी एक्सट्रीम पे चली जाए कि इंसान बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, तो वो भी गलत है। दोनों चीजें जरूरी हैं। और मुत्तकी के दिल में तो खौफ और उम्मीद बराबर होते हैं ना, दोनों चीजें होती हैं। आप देखें हजरत उमर का कॉल है ना कि अगर आवाज दी जाए कि एक आदमी के सिवा सब जन्नत में चले जाएंगे, तो मुझे डर है कि वो आदमी कहीं मैं ही ना हूं। अब देखें डर कितना है। और अगर आवाज दी जाए कि एक आदमी के सिवा सब जहन्नुम में चले जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो मैं ही हूं। तो ये देखें दोनों चीजें बराबर हैं। और खौफ उनको इतना हुआ करता था कि हजरत उजैफा जिनको रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मुनाफिकीन का पता बता दिया हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उनसे जाके पूछा करते थे कि कहीं मेरा नाम भी उस लिस्ट में तो नहीं है मुनाफिकों की, खौफ था ना उनको। तो अच्छा खौफ वही है जो आपसे अमल करवा ले, ये जो हम बस ऐसे ही झुरझुरी ले लेते हैं, हाँ ये बड़ा डर लगता है बड़ा डर लगता है, उसके बाद अमल ही नहीं बदल रहा, तो वो कोई खौफ नहीं है, ऐसे ही बेकार की सिर्फ प्रिटेंडिंग है। तो खौफ सारी जिंदगी खौफ होना चाहिए। और उलमा कहते हैं कि मरते वक्त इंसान के लिए बेहतर है कि उम्मीद गालिब हो, उम्मीद डोमिनेंट हो, क्योंकि खौफ समझ लें ऐसा कोड़ा है जिससे इंसान अमल करने पे राजी हो जाता है, अमल करने पे तैयार हो जाता है, लेकिन जब मरने का वक्त आ गया तो अब तो अमल का वक्त नहीं है। अब अगर वो खौफ करेगा तो उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि अमल का वक्त खत्म हो गया, तो उस वक्त में उम्मीद उसको होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से उसके दिल को ताकत मिलेगी और अल्लाह ताला की मुलाकात का शौक पैदा होगा। और नेकी करते वक्त भी इंसान में खौफ होना चाहिए कि पता नहीं कबूल हुई या नहीं। अब आप देखें कि अगर हम अपने असलाफ को देखें तो वो सारी जिंदगी खौफ ज़्यादा ही रहे, और अल्लाह ताला ने भी तो फरमाया ना कि वाकई इनके परवरदिगार का अजाब बेखौफ होने की चीज नहीं है, सूरह मआरिज में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह तूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नती एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो के बात करेंगे और कहेंगे हम तो इससे पहले दुनिया में बहुत डरा करते थे, तो अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको जहन्नुम के अजाब से बचा लिया। इसका मतलब है कि वो जो जन्नत में पहुंचे हैं ना, वो दुनिया में उनकी क्वालिटी क्या थी, वो डरा करते थे, वो डर डर के रहते थे, बेखौफ नहीं थे, इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी गमगीन नहीं होता उसको चाहिए कि वो इससे खौफ करे कि वो दोजखियों में से ना हो जाए, क्योंकि जन्नती क्या कहेंगे उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न, के उस रब की तारीफ है, उसका शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर किया। वो गमजदा रहा करते थे। हम अपने घर वालों में, वो कहेंगे हम अपने घर वालों में अल्लाह से डरने वाले थे। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं ना, हमें बस खौफ की बातें ना बताएं, हमें बस जन्नत की बातें बताते हैं, ये तो जहन्नुम की बात ना हमें बता जाए, हमें बड़ा डर लगता है, इससे कोई जरूरत नहीं हमें बताने की, हमें ऐसे ही रहने दें। तो ये बात गलत है, क्योंकि देखें हमारे जो असलाफ थे वो कैसे खौफजदा हुआ करते थे, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने दोनों चीजों का जिक्र किया, खौफ और उम्मीद दोनों ही होनी चाहिए, और इतना खौफ होना जरूरी है जिससे कि आप फर्ज अदा कर सकें और हराम चीजों से बच सकें। अगर आप बिल्कुल ही आपके अंदर खौफ नहीं होगा तो फिर आप किस तरह से फराइज अदा करेंगे, और इतना खौफ होना चाहिए कि आप नफली इबादत, नफली काम भी कर सकें, फजूल चीजों से बच सकें। हाँ ये बात अलग है कि इतना खौफ हो जाए कि इंसान बीमार हो जाए, या दायमी गमजदा रहे, या ऐसा हो जाए कि मरने के करीब हो जाए, वो जाहिर है सही नहीं है, मगर एक हद तक खौफ तो जरूरी है ना। लेकिन हम डरना ही नहीं चाहते, ना हमारे अंदर कोई खौफ है, ना कोई तमा है, कुछ भी नहीं। खौफ तो कोड़ा है, वो ही आपसे काम करवाएगा, जिसमें खौफ ही नहीं है वो क्या काम करेगा। इसी वजह से देखिए, आपको शायद इस चीज पे आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जहन्नुम भी अल्लाह ताला की दूसरी नेमतों में से एक नेमत है, जिसे अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं, खौफ खाते हैं और उसकी वजह से अमल करते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में फरमाया ना, जहां पे अपनी दूसरी नेमतों का जिक्र किया वहां पे जहन्नुम का भी जिक्र किया। जहन्नुम ना होती तो कोई लोग काम ही ना करते, कोई अमल ही ना करता। कहा जाता है कि हसन बसरी और उमर बिन अब्दुल अजीज से ज्यादा, यजीद बिन हशब कहते हैं कि इन दोनों से ज्यादा मैंने डरने वाला कोई नहीं देखा, ऐसे लगता है कि जहन्नुम इनके सिवा किसी और के लिए तैयार ही नहीं की गई, इतना वो डरते थे। ऐसा लगता था बस जहन्नुम में इन्होंने ही जाना है। तो हजरत हसन बसरी जब रोने लगे तो किसी ने कहा आपको किस चीज ने रुलाया, फरमाया मुझे डर है कि कल को मैं कहीं जहन्नुम में ना फेंक दिया जाऊं और मुझे दुनिया में पता ही ना हो। हजरत फुजैल फरमाते हैं कि मैंने एक रात अली को घर के सहन में झांक कर देखा, वो कह रहे थे जहन्नुम जहन्नुम, और जहन्नुम से खुलासी कब होगी, वो तो इतना डरा करते थे, इतने खौफजदा रहते थे। क्या बात है कि हम नहीं डरना चाहते, हम इसलिए नहीं डरना चाहते क्योंकि हमें पता है अगर हम डर गए तो हमारी जिंदगी में ये जो इंजॉयमेंट है कहीं कम ना हो जाए, कहीं फन कम ना हो जाए, कहीं हमारे मजे में कोई खलल ना आ जाए। अगर डर गए तो फिर मजा कैसे आएगा, किसी चीज में लज्जत ही नहीं रहेगी। और हम तो यहाँ पे दुनिया को जन्नत बना के बैठे हुए, तो हमें तो यहाँ पे बस फन करना है, मजे करने। अब अगर दुनिया में ही मजा किरकिरा हो गया तो वो हमें गवारा नहीं है, इसी वजह से हम नहीं सुनना चाहते ना खौफ की बात, और कहते हैं बस ना सुनाया करें, बस आप बहुत डराती हैं। तो डरना तो जरूरी है, डरोगे नहीं तो काम कैसे करोगे। आप सोचें वो तो खुद अपने इमेजिन करके अपने आप को डराया करते थे पहले लोग। अबू सुलेमान बयान करते हैं कि अक्सर तौर पे मेरे सामने ये शक्ल बन जाती है कि मेरा सर जहन्नुम के दो पहाड़ों के दरमियान है, और कभी ये नजर आता है कि मैं जहन्नुम में लटका हुआ, हद तक इसकी गहराई तक मैं पहुंच गया हूं। अब आप खुद सोचें, जो इंसान ये सोचता हो वो रात को क्या सो सकता है, वो तो अपने रब के हजूर खड़ा होके जरूर दुआएं करेगा, रोएगा, जहन्नुम से पनाह मांगेगा। सूरह आले इमरान के भी हम एंड में पढ़ते हैं ना कि वो लोग कैसे जहन्नुम से पनाह मांगते थे। हजरत मुआजा अदविया की जब शादी हुई तो उनके खामिन जो थे, जब रुख्सती की गई तो उनके भतीजे ने उनको गरम हमाम में नहाने के लिए दाखिल कर दिए। पहले जमाने में हमाम हुआ करते थे, गरम हमाम, हॉट टब समझ लें। फिर एक साफ खुशबूदार कमरे में भेज दिया, तो उन्होंने वहां पे खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज पढ़ते रहे, सुबह हो गई, और उनकी जो दुल्हन थी उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी नमाज पढ़ते पढ़ते सुबह कर दी। जब सुबह हुई तो जब उनके भतीजे को पता चला तो उन्होंने कहा, ये आपने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया, असल में कल तुमने मुझे पहले ऐसी जगह दाखिल किया कि जिससे मुझे जहन्नम याद आ गई, फिर ऐसे कमरे में दाखिल किया जहां से जन्नत याद आ गई, तो मेरी सोच इन्हीं दोनों के दरमियान ही घूमती रही, हत्ता कि सुबह हो गई नमाज पढ़ते पढ़ते। तो वो लोग तो ऐसे डरा करते थे, वो लोग तो उनकी तो सोचें ये हुआ करती थी। अब हम मसला हमारा ये होता है कि हम थोड़ी देर के लिए तो डरते हैं, फिर दोबारा नडर हो जाते हैं, और ये नेचुरल है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नेचुरल बात है ये। इंसान हर टाइम एक ही हालत में नहीं रह सकता। आपको पता ना, हजरत हंजला ने कहा था, ये हंजला मुनाफिक हो गया, क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अलग हमारी हालत होती है, बाहर जाते हैं बीवी बच्चों में जाते हैं, घरों में जाते हैं अलग हालत हो जाती है, बाकी अब कुरान की मजलिस में बैठते हैं हम, हमारी हालत डिफरेंट होती है, उसके बाद एक दूसरे से मिलते हैं, अपने घरों में रहते हैं, कुछ है, तो बातचीत करते हैं, डिफरेंट दिल की हालत हो जाती है। तो अब क्या किया जाए? अब इसका इलाज ये है कि दोबारा दोबारा सुनते रहें। दिल की तो कभी भी एक सी हालत नहीं रह सकती, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता मुसलसल हम एक ही हालत में अपने दिल को रखें। तो इसलिए बार बार सुनते रहें, बार बार याद दहानी करें, ताकि दिल में ये याद ताजा रहे। और खौफ का मतलब ये नहीं है कि हम कोई रोनी सूरत बना के फिरते रहें और हम कहें कि हम बड़े डरे हुए, ये नहीं है। खौफ का ताल्लुक दिल से होता है, दिल में खौफ होना चाहिए, और खौफ का मकसद ही है हम सीधे रहें। आप अपने दिल को भी खुद जान सकते हैं, अपने इसमें नाप तोल कर सकते हैं कि मैं, मेरे दिल में कितना खौफे खुदा है। फिर ऐसे लोगों के पास बैठे हैं जिनको खौफ आता हो, ताकि आप भी खौफ खा लें। तो सिर्फ उम्मीद की बातें करते रहना, सिर्फ बस खुशी की बातें करते रहना, सिर्फ जहन्नुम जन्नत का ही सिर्फ बताते रहना, और कभी अल्लाह के अजाब की बात ना करना, कभी आखिरत की बात ना करना, वो भी सही नहीं है। फिर तीसरी ये चीज एक आप ये कर सकते हैं कि कुछ लम्हे दिन में ऐसे जरूर निकालें जिसमें कि आप अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर, उसकी ताकत के ऊपर, आखरत के ऊपर, हिसाब किताब के ऊपर जरूर सोचें, अल्लाह से बात करें, रोएं उसके आगे, तो इससे भी इंशाअल्लाह ताला वो खौफ की कैफियत आती है। और अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि अल्लाह से वही डरते हैं जो उसके इल्म वाले बंदे होते हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, उलमा लोग जो होते हैं ना इल्म वाले, वो अल्लाह से डरते हैं। तो आपका इल्म जब बढ़ेगा ना, इल्म आप हासिल करते रहेंगे तो आप अल्लाह से डरने वाले रहेंगे। इल्म से ताल्लुक नहीं रहेगा, अल्लाह का खौफ भी नहीं रहता। और चूंकि कुछ लोग खौफ ज़दा होना ही नहीं चाहते, तो वो इल्म की तरफ आते ही नहीं, करते कहीं हम डर ना जाए। अस्तग़फिरुल्लाह, डर गए तो अमल बदलना पड़ेगा, डर ना जाए कहीं। तो इंसान ये देख ले यहां से कि जन्नत में जाने वालों की जो, या जो अल्लाह ताला के ऊपर आयात पे ईमान रखते हैं, उनकी जो खूबी बयान की गई यहाँ पे, तो तहज्जुद गुजार भी हैं, और क्या है, अल्लाह ताला को जब उठते हैं तो खौफ और तमा दोनों को सामने रख के उसको पुकारते हैं। और फिर आप देखें कि खौफ और तमा के बाद फौरी जो चीज आई वो है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और वो खर्च करते हैं उसमें से जो रिस्क दिया उनको। फिर जब वो अल्लाह को ऐसे पुकारते हैं ना, तो उनकी हालत ये होती है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से भी नहीं चूकते, ये नहीं करते। फिर अल्लाह ताला के साथ उनका ऐसा रिलेशनशिप होता है, कुछ चीज अल्लाह से बचा के नहीं रखते, लेकिन जिससे मोहब्बत होती है। क्या आप कभी उससे कोई चीज बचा बचा के रखते हैं? मसलन आपके बच्चे हैं, क्या आप कभी ये कहते हैं कि मैं सारा कुछ समेट लूं और मेरे बच्चे ना कुछ इस्तेमाल कर लें? नहीं, आप कहते हैं मेरा जो कुछ भी है मेरे बच्चों का ही है ना, यही हम डायलॉग बोलते हैं ना, क्यों ये कहते हैं? हालांकि आपकी बड़ी मेहनत की कमाई होती है, तो क्यों कहते हैं जो कुछ मेरा है वो सब मेरे बच्चों का ही है? क्योंकि बच्चे आपको बहुत प्यारे हैं। तो जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, वो अल्लाह की राह में खर्च करना उसके लिए मुश्किल नहीं रहता। वो कहता है जो कुछ मेरा है वो अल्लाह का ही तो है। ये तो कहते हुए सुना है, जो कुछ मेरा है वो बच्चों का ही तो है। ये हम कितनी दफा कहते हैं, जो कुछ मेरा है वो अल्लाह का ही तो है, मेरा तो कुछ भी नहीं। जब इंसान खर्च करने लगता है ना, शैतान को ये बात बड़ी बुरी लगती है। वो इंसान को पीछे खींचता है कि अभी तो बहुत सारे काम है, अभी बच्चों की जरूरियात है, अभी घर की जरूरियात है, अभी तो तुमने इतना बड़ा खर्चा किया है, इतना बड़ा तुम्हारे पर आया, अभी इतनी जगह पे तुम और तुम्हें काम पैसा लगाना है, तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, जरा संभल के खर्च करो, अब अभी अभी नहीं कर सकते, जरा ठहर जाओ, बाद में कर लेना। हालांकि खर्च भी तो वही अफजल है ना, कि इंसान को जब ये पता हो कि अगर मैंने खर्च किया है तो मैं फकीर हो जाऊंगा, और अगर मैं बचा लूंगा तो मुझे फायदा होगा, जब ये इंसान की सिचुएशन हो उसी वक्त का खर्च करना अफजल है। समझ आई बात? कभी जहन में आता है ना, अगर मैंने खर्च कर दिया तो जरा मेरा हाथ तंग हो जाएगा, और अगर मैंने बचा लिया मुझे फायदा होगा, तब खर्च करें। तो जब नेकी करनी मुश्किल हो जाती है ना, उसके बावजूद आप नेकी करते हैं तो इस पे अजर भी ज्यादा मिलता है। जैसे जब कभी आप फील करते होंगे कि क्लास बड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ा मुश्किल है इसको मैनेज करना, आ कितनी लंबी है, हाय कितनी ये, उस वक्त आप अपने आप को जो बांध के रखते हैं, कभी आपको ये फिक्र लग जाती है कि मुझे याद नहीं होता, फिर क्या फायदा? अच्छा मेरा तो अमल ही नहीं बदलना, तो फिर क्या फायदा? अच्छा मेरे जहन में तो बात ही नहीं रहती, क्या फायदा इसको पढ़ने का, छोड़ देती हूं मैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को चलाए रखते हैं, जमे रहते हैं, तो उसका अजर भी ज्यादा है। तो क्या करें, ये इंसान क्या करता है, देखें, खर्च करता है, तहज्जुद पढ़ता है, और दिल के अंदर उसके उम्मीद और खौफ दोनों रहते हैं। और देखिए, आप ये सोचते होंगे कि इन मुत्तकी लोग या सहाबा कराम क्यों डरा करते थे, उन्होंने तो इतना किया हुआ था, उनको क्यों डर रहता था? क्योंकि हर एक अपने अमल की कमी की वजह से खौफ ज़दा रहता है कि पता नहीं अल्लाह ताला ने ये अमल मेरा इस काबिल है भी कि वो कबूल हो, या मेरा इतना इनाफ अमल है भी कि मुझे अजाब जहन्नम से पनाह मिल जाए। अरे ऐसे लोग ना अपने अमल से कभी गाफिल नहीं होते, वो अमल करते जाते हैं। अब जो इंसान खौफ और तमा से अल्लाह को पुकारने वाला है, जिसको अपनी गलतियों का एहसास है, जिसको अपने गुनाह नजर आ रहे हैं, वो उनकी वजह से खौफजदा है, उसको डर है मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, उसको उम्मीद भी है कि रब बड़ा रहमान और रहीम है, तो उसके बाद क्या सोच उभरती है कि मैं अपनी गुनाहों को दूर करने के लिए, रब को राजी करने के लिए खर्च करूंगी, मेरा रब इससे राजी होता है, तो फिर खर्च करता है। आपके दिल में ख्वाहिश आती है खर्च करने की? शॉपिंग में खर्च नहीं करना, सदका, या यही दिल में रहता है कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है तो हम क्या सदका करें? क्या ये जहन में गालिब रहती है बात? तो जरूर सदका कीजिए, जरूर अपने हाथ से दें, खास तौर पे अब रमजान आ रहा है तो उसके लिए जरूर सोच के रखें कि मैंने क्या खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में, और तहज्जुद गुजारी का अभी से एहतमाम करें, अभी से उठना शुरू करें। आगे को भी तो हम रोजों के लिए उठेंगे ना, सहरी के लिए उठेंगे, तो क्यों ना अभी उठें? आपको पता है हदीस में आता है, जहन्नम सॉरी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, जन्नत में झरोके हैं। एक बद्दू खड़ा हुआ पूछा, वो किन के लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उनके लिए हैं जिन्होंने नरम कलाम किया, मीठा मीठी बात बोली, अच्छी तरह बात करता है, खाना खिलाता है, पैर दर पैर रोजे रखता है, और रात को तहज्जुद पढ़ता है जब लोग सोते हैं। अल्लाह के नजदीक देखें उसका कितना बड़ा मकाम है। तो इन लोगों के लिए जो रात को तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, ऐसे बालाखाने होंगे जन्नत में जिनका अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नजर आता है, खास तौर पे तहज्जुद गुजारों के लिए। हम तो हर फजर के लिए उठना मुश्किल अगर है तो फिर पता है तहज्जुद के लिए क्या उठेंगे, लेकिन हमें इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करनी है। जब ये सारी बातें हमें सुनाई देती हैं, सुनती हैं कि इतने बड़े मकाम उनको मिलेंगे, छोटी सी नींद की कुर्बानी है ना, इतनी थोड़ी देर के लिए अगर आप उठ जाएं दिन में किसी वक्त, उस आधे घंटे को पौने घंटे को पूरा कर लें, तो कितना फायदा हो सकता है। दोबारा तो जिंदगी नहीं मिलनी ना कि हम आके तहज्जुदें पढ़ सके, लेकिन एक दफा पढ़ने से अगर आपको कोई कहे कि आप रात की ड्यूटी कर लें इतने बजे से इतने बजे तक, तो आपको एक घर मुफ्त हम देंगे, फ्री में। लोग तो बड़े बड़े प्रोग्राम आते हैं कि ये देंगे वो देंगे, तो उसके लिए कितने पापड़ बेलते हैं। और ये कह दिया जाए आपको फ्री एक मेंशन मिलेगा, आप कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ इतने बजे से इतने बजे तक, रात को मसलन 2 से 3 बजे तक आ, लेकिन आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, हम सब दौड़ के जाएंगे ना। और वो जो मेंशन मिल रहा है जन्नत में, जिसका अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नजर आता है, खास तौर पे उनके लिए जो रात को जागने वाले हैं, उस वक्त जिस वक्त सब सो रहे होते हैं, लेकिन कोई क्या उसके लिए मेहनत करने वाला है? क्या उसके लिए दौड़ने वाला कोई है? क्या उसके लिए कोई नींद कुर्बान करेगा? अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए और ये उतना हमारे लिए आसान कर दे इंशाल्लाह उतना। फिर ऐसे लोगों के लिए फला तालमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रत आयुन, ऐसे लोगों के लिए वो कुछ छुपाया गया है आंखों की ठंडक में से जो कोई नफ्स नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि क्या छुपाया गया। अल्लाह ताला ने बदले के तौर पे क्या रखा हुआ है ये कोई ना इसके बारे में जान सकता है दुनिया में। ये तो हम जो बातें करते हैं ना कि हाय ये ऐसा खूबसूरत सीन है, जन्नत कैसी होगी, ये तो हम बस ऐसे ही एक, यानी दूर दूर का भी ये खैर कोई मुमासलत नहीं हो सकती, कोई सिमिलैरिटी नहीं हो सकती। और हमारी चूंकि नजर में यही चीजें इतनी खूबसूरत हैं, तो हम इनको, इनसे थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि जन्नत कैसी होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि वो ऐसी चीज है, फला तालमु नफ्सुन, कोई नफ्स नहीं जानता, कोई बशर बंदा बशर कोई जिन कोई भी नहीं जानता, मा उख्फिया लहुम, क्या कुछ छुपा के रखा गया है इनके लिए, मिन कुर्रति आयुन, उनकी आंखों की ठंडक में से। यानी एक जगह पे आता है कि जन्नत में अल्लाह ताला ने वो चीजें रखी हुई हैं कि जिनको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में कभी उसका ख्याल आ सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। अगर देखा जाए तो हर इंसान के जहन में जन्नत का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है ना, कोई तसव्वुर है, कुछ इमेजिन करते हैं आप अपनी अपनी मालूमात के मुताबिक, लेकिन याद रखिए इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अल्लाह ताला ने वो कुछ छुपा के रखा हुआ है, छुपा के किस लिए रखा है? इसलिए छुपा के रखा हुआ है क्योंकि ये भी छुपा छुपा के अमल किया करते थे दुनिया में, ये भी इनके दिखावे के अमल नहीं होते थे, सिर्फ अल्लाह की खातिर होते थे, बता बता के नहीं करते थे, लोगों में इश्तेहार नहीं दिया करते थे, आओ तुम्हें मैं बताऊं मैं क्या करती हूँ, और हमें तो चैन ही नहीं आता जब तक 4 लोगों को पता ना चल जाए कि मैंने कोई नेकी का काम किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन ये उनके लिए है, ये सब चीज अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है, फिक्र ना करना। एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की नेमतें जिसे मिले वो कभी भी वापस नहीं होंगी, इनके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, इनकी जवानी कभी नहीं ढलेगी, इनके लिए जन्नत में वो है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल पर उनका वहमो गुमान भी आया हो, यानी अंदाजा भी नहीं आप कर सकते। तो सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया या अल्लाह, अदना जन्नती का दर्जा क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, अदना जन्नती वो है कि जो कुल जन्नतियों के जन्नत में चले जाने के बाद आएगा, उससे कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो कहेगा, ऐ अल्लाह मैं कहाँ जाऊं, हर एक जगह तो किसी ने कब्जा कर लिए, अपनी अपनी चीजें संभालनी है, अब मैं किधर जाऊं? उससे कहा जाएगा, क्या तू इस पर खुश है कि तेरे लिए इतना हो जितना दुनिया के किसी बड़े बादशाह के पास था? वो कहेगा, परवरदिगार मैं तो इस पे बड़ा खुश हूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, तेरे लिए इतना है और इतना ही और, इतना ही और, इतना ही और, इतना ही और 5 गुना। ये कहेगा, बस बस ऐ रब मैं राजी हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा, ये सब कुछ हमने तुझे दिया और इसका 10 गुना और भी दिया, और भी जिस चीज का तेरे दिल चाहे और जिस चीज से तेरी आंखें ठंडी रहें वो सब कुछ दे दिया। ये कहेगा, मेरे परवरदिगार मेरी तो बाछें खिल गई, जी खुश हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ताला अगर अदना दर्जे का जन्नती का ये कैफियत है तो आला दर्जे के जन्नती ये क्या हाल होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो लोग हैं जिनकी खातिर मदारत की करामत में मैंने अपने इसको अपने हाथ से लिखा हुआ है और इस पर मोहर लगा दी है कि उनकी जो मेहमान नवाजी होगी ना, उसको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से लिखा है कि वो क्या मेहमान नवाजी होगी, और उसको पर स्टैंप कर दी, सील कर दिया उसको। फिर ना तो वो किसी के देखने में आई, ना किसी के सुनने में, ना किसी के ख्याल में। अल्लाह ताला को ही सिर्फ पता है, कोई नफ्स जानता ही नहीं है। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है। इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज। सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि फरिश्ते जन्नतियों के पास दुनिया के दिन के अंदाजे से हर दिन में 3-3 दफा अल्लाह की तरफ से तोहफे लाएंगे जो इनकी जन्नत में नहीं। और यही इस आयत में भी आया, वो ऐसे तोहफे लेकर आएंगे कि जो उन्होंने कभी तसव्वुर में भी नहीं आ सकते। और वो आके क्या पैगाम देंगे फरिश्ते, उनसे आके कहेंगे अल्लाह तुमसे खुश है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये बात इतनी प्यारी है ना। सारी जन्नत की नेमतें एक तरफ, और ये एक बात मैं कहती हूँ एक तरफ है कि अल्लाह तुमसे खुश है। ये बात अगर दुनिया में हमें पता चल जाए कि अल्लाह हमसे खुश है, तो और कुछ भी नहीं चाहिए कि अल्लाह किसी से राजी हो जाए, कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो वो जन्नत की नेमतें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई जन्नत की जमीन को देखे और उसकी मट्टी के बारे में पूछे तो वो कस्तूरी की और जाफरान की है, और उसकी छत अल्लाह का अर्श है, और फर्श कस्तूरी का है, और इसके पत्थर मोती हैं, मोती पर्ल्स, और जवाहरात हैं, हीरे जवाहरात ज्यूल्स, और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाला सामान क्या है, पता है किससे कंस्ट्रक्शन हुई हुई उसकी? सोना और चांदी, और इसके दरख्त भी सोने और चांदी के हैं, कोई लकड़ी के नहीं है। इसके फल अंगूर और शहद हैं, और इसके दरख्तों के पत्ते इतने नफीस हैं, और इसमें दूध शहद और शराब की नहरें हैं जिसको पीने वाले का दिल बोझल नहीं होगा, पीने वाले को मजा आएगा। और इसके खाने फल और परिंदों का गोश्त है, और जिस चीज का भी उसका दिल चाहेगा, और इसके पीने की चीजें तस्नीम जंजबील और काफूर होंगे, और वहां के बर्तन सोने और चांदी के होंगे जो शीशे की तरह साफ होंगे, इतने चमकदार होंगे। इसके दरवाजों की वसत 40 साल के सफर की मसाफत होगी, मगर वो वसत भी उस दिन कम पड़ जाएगी, इतने लोग जा रहे होंगे। पता कितनी विड्थ होगी उसकी, 40 ईयर्स की विड्थ होगी, 40 ईयर्स का सफर इंसान जो तय करेगा, इतनी विड्थ होगी एक एक दरवाजे की, फिर भी वो इतने भर जाएंगे। और हवा की सरसराहट से उसके दरख्तों से ऐसे प्यारे म्यूजिक की आवाज आ रही होगी, दरख्तों का साया 100 ईयर्स के डिस्टेंस तक होगा। ये 100 ईयर्स तक कोई सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो साया खत्म नहीं होगा। और अदना दर्जे का जो जन्नती होगा ना, सबसे लोएस्ट लेवल का, उसके जो घर होगा और महल जो होगा वो 2000 साल के डिस्टेंस तक फैला होगा, 2000 साल तक कोई चलता रहे, इतने डिस्टेंस तक फैला होगा। उसके खेमे और गुंबदों का क्या कहना, एक एक गुंबद का घर 60 माइल्स का होगा, और इसकी बिल्डिंग्स जो होंगी, बहुत सारी स्टोरीज होंगी एक एक बिल्डिंग की, जिनकी बुलंदी को नजर महरूम ना कर सकेगी, और इनकी इमारतों के नीचे नहरें बह रही होंगी, और इनका लिबास रेशम का होगा, कपड़े रेशम के होंगे जिसपे सोने से कशीदाकारी की गई होगी, और उनकी बैठने की जगह आला किस्म के, जैसे सोफे आप कह रहे हैं आज के, और बहुत डेलिकेट, बहुत फाइन रेशम होगा, और तकिए होंगे जिन पर सोना जड़ा होगा, और उनका हुस्न अपना कैसा होगा कि चांद भी शर्मा जाए, और उनकी उम्रें 33 ईयर्स की होगी एज, यानी वो जवानी ऐसी होगी, और कद 60 हाथ का, और जन्नत में खूबसूरत औरतों की आवाज सुनेंगे, उनका गाना सुनेंगे, इससे बढ़कर ये फरिश्तों का और नबियों का कलाम सुनेंगे, और इससे बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खिताब होगा, और इनकी सवारियां जिसपे वो जन्नत की सैर करेंगी अजीब किस्म की होंगी, सवारियां भी तो होंगी ऐसे उड़ के ले जाया करेंगी कहीं ना कहीं, इनके जेवर और कंगन सोने और मोतियों से जड़े होंगे, और इनकी खिदमत के लिए यंग लड़के होंगे, इनकी खूबसूरती पर किसी की उनसे पहले नजर ना पड़ी होगी, इतने खूबसूरत होंगे वो वेटर्स ही इतने खूबसूरत होंगे, तो अब आगे क्या। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा, ऐसे दीदार होगा जैसे हम सूरज और चांद को देखते हैं ना, कोई रुकावट तो नहीं होती देखने में, इस तरह से अल्लाह ताला का दीदार होगा। तो दौड़ के चलो उस घर की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल में उसका ख्याल आया, उस घर की चाबी कौन सी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके दंदाने क्या है, नेक आमाल, जो इन दंदानों वाली चाबी को लेकर आएगा वो जन्नत का दरवाजा खोल सकेगा। तो दंदाने भी वो होने चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, और चाबी भी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा रहेंगे वहां पे, किसी ने नहीं निकालना। सुभान अल्लाह। और ये कि यहाँ पे तो कोई मोटे होने का डर या इतना इंसान खा ही नहीं सकता, वहां पे एक एक इंसान को ताकत और कुव्वत कितनी मिलेगी खाने पीने की, और इसकी लज्जत की 100 आदमियों के बराबर, ताकि जितना खाना चाहे खा सके, जितना पीना चाहे पी सके, लजीज खाना भी हो यहाँ पे तो आप एक लिमिट तक ही खा सकते हैं ना, और ना कोई पेशाब, ना पखाना, ना कोई पीरियड्स, ना कोई कोई चीज, जो भी होगा वो पसीने की तरह स्किन के इन पोर्स में से खुशबू परफ्यूम की तरह निकल जाएगा, वो पसीना परफ्यूम वाली खुशबू होगी उसकी, कस्तूरी की, और घने सायों में बैठे होंगे अपने साथियों के साथ, थ्रोन्स पे तकिए लगाए हुए, और हर किस्म की लजीज खाने इनको वहां पे पहुंचाए जाएंगे, और क्या होगा, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, रब्बिर रहीम की तरफ से उनको सलाम कहा जाएगा, तो कैसे ना वो चेहरे तरोताजा होंगे। सूरह कयामा में अल्लाह ने फरमाया ना, वुजूहु यौमा इज़िन नादिरा इला रब्बिहा नादिरा, उस दिन कुछ चेहरे होंगे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, सुभानअल्लाह, रब की तरफ देखने से ही उनके चेहरे तरोताजा हो जाने हैं। तो लेकिन ये सब किस सूरत में मिलेगा, जजा अम्बिमा कानू यअमलून, ये जजा है, ये बदला है उसका जो वो अमल किया करते थे। तो अमल के बगैर भी कोई बदला मिलता है? नहीं, जो कोई काम करे ही नहीं उसको किस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा? कोई आदमी पूरा महीना मेहनत करता है तो उसको सैलरी मिलती है ना, आपके घर कोई काम करता है तो आप एंड ऑफ द डे उसको पेमेंट करते हैं ना, जब कुछ काम ही ना किया हो किसी ने तो वो ऐसे ही कहे कि मुझे रिवॉर्ड दे दिया जाए, वो तो नहीं मिलेगा। तो कुरान हमें बताता है कि जजा अम बिमा कानू यामलून, कोई इस गलत फहमी में ना रहे, कोई इस खुश फहमी में ना रहे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे और फिर हमें बस सब कुछ मिल जाना है और इस सारा कुछ हमारे लिए, नहीं, जो अमल करके लाएगा फिर उसके लिए ये जजा है। तो लोग कहते हैं अमल करना ही बड़ा मुश्किल है, अमल तो हमसे होना ही नहीं है, तो फिर वही बात याद आती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कितना सबर है इनका आग पे ना, फिर ये इन्होंने सबर कर लिया आग पे कि ठीक है हम आग में चले जाएंगे, अमल नहीं हमसे होता, इसके लिए कौन ना अमल करेगा, कौन ना मेहनत करेगा, कौन ना चाहेगा कि मैं इस तक पहुंच जाऊं। तो एक गलत फहमी को दूर कर लेना। आफा मन कहना मोमिनन का मन कहना फासिका ला यस्तवून। तुम सोचते हो कि जो मान जाने वाले हैं और जो अल्लाह की हदें तोड़ने वाले, दोनों को बराबर कर दिया जाएगा? तुम अमल कुछ भी नहीं करोगे, बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, दुनिया में गुम रहे, कुछ करने को जरूरी समझा ही नहीं, और वहां पे जाके बराबर हो जाएंगे? एक है वो जो मान गया, आपने देखा ना मानने वाले की जिक्र आया है ना सूरह आयत नंबर 15 में, इन्नमा युमिनु भी आया आती ना, वो जो मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला, उसके कलाम को मानने वाला, उसमें और फासिक में तो बहुत फर्क है। फासिक कौन होता है पहले तो हम ये समझे, हदें तोड़ने वाला कौन सी हदें? हद या तो एक माना हो सकता है ईमान की हद तोड़ने वाला, ईमान की हद अगर क्रॉस कर ली, उस बाउंड्री को क्रॉस कर ली, समझ लें एक वो जो फीता लगा होता है उसको, वो भागता हुआ आता है ना रेस में और वो तोड़ता हुआ चला जाता है जो एंड फिनिश लाइन होती है, तो ईमान की हद है उसको जो क्रॉस कर गया तो कहाँ पे एंटर हो गया? कुफर में। तो फासिक का एक माना तो काफिर हो गया, और दूसरा अमले साले की, अमल की भी एक बाउंड्री है, उससे जो निकल गया तो अल्लाह की नाफरमानी में चला गया। आप इसको ऐसे इमेजिन करें, मसलन आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आगे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहां नहीं जा सकते, बैरियर लगे हुए, तो आप कहें ये कौन होते हैं हमें मना करने वाले, इनकी क्या मिजाल है, और मेरी तो अक्ल समझ इतनी है, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे जाना चाहिए, और मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने सही ये पाबंदी लगाई है, इनको ये पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, और मैं क्यों ये बात मानूं, मैं तो जाऊंगी यहाँ, और आप गाड़ी अपनी रिवर्स करके जोर से ले जाके मारें और तोड़ती भी चली जाए हद, ये है फासिक, कि अल्लाह ने हदें लगा दी हैं, और आप कहेंगे मुझे कौन बताने वाला होता है, मुझे कौन कोई मना करने वाला होगा, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, ये फासिक है। और दूसरा कौन है जो आगे नहीं बढ़ता, वो कहता है नहीं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया ममनू जगह है, मैं मान गई, मैं इसको मान गई, और जिस पे मेरा रब राजी है मैं भी राजी हूं, मैं नहीं जाऊंगी यहां, ये बाउंड्रीज है अल्लाह की, मैं इसे बाहर नहीं निकल सकती, यहां पे मेरे रब ने मुझे रोक दिया है, मैं यहां रुक गई, वो है मोमिन। तो कितना फर्क है मोमिन में और फासिक में। इस दुनिया में भी आप देखते हैं दोनों में फर्क होता है, दोनों के अमल में, दोनों के हाल हुलिये में, दोनों की सोच में, दोनों के अखलाक में, मिजाज में बड़ा फर्क होता है, लेकिन आखरत में जाके तो और भी बड़ा फर्क हो जाएगा। वहां पे जाके क्या आप सोचते हैं दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं हो सकते बराबर। अच्छा हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम सोचते हैं कि सारे मजहबों वाले भी पता नहीं बराबर ही हैं। एक एक शेर लिखा हुआ कहीं पढ़ा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही आपस में भाई भाई, तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं बराबर हो ही नहीं सकते, काफिर और मोमिन कैसे बराबर हो सकते हैं? और दूसरा ये कि अल्लाह का नाफरमान और फरमा बरदार कैसे बराबर हो सकते हैं? तो आप इसको काफिर और मोमिन के भी उसमें ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं उसके अंदर भी एक फरमा बरदार, एक मान जाने वाला और एक ना मानने वाला। सूरह जासिया में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, क्या जिन लोगों ने बुराइयों का इरतकाब किया, बुराइयां की हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि हम उनको उनकी तरह कर देंगे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए? आई थिंक ये हमारी गलत फहमी को दूर करने के लिए काफी होना चाहिए, क्योंकि हम सब ये समझते हैं, सब जन्नत के तलबगार हैं और सब चाहते हैं कि जन्नत में चले जाएं, उसका शौक भी रखते हैं, और ये समझते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमें बराबर कर दिया जाएगा उसके जो करने वाला है। तो अल्लाह ताला ने देखिए बार बार कुरान पाक में इस चीज को बिल्कुल गलत फहमी को बिल्कुल क्लियर कर दिया। सूरह सौद आयत 28 में अल्लाह ताला ने फरमाया अम नजअल अल्लदीन आमनु वामिलु सालिहाती कल मुफसिदीन फिल अर्द, क्या हम बना देंगे ईमान वालों को और साले अमल करने वालों को फसाद करने वालों की तरह जो जमीन में फसाद करते हैं? अम नजअल अल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम मुत्तकी लोगों को फुज्जार की तरह, फाजरों की तरह कर देंगे? सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 20 में ला यस्तफी अस्हाब नारी व अस्हाब जन्ना, बराबर नहीं होते अस्हाब नार और अस्हाब जन्ना, दोनों बराबर नहीं हो सकते, ना उनकी दुनिया बराबर है, दुनिया की जिंदगी भी डिफरेंट है और आखरत तो डिफरेंट है ही, अस्हाब जन्नति उमुल फाइजून, जन्नत वाले तो वही कामयाब है। तो हम कैसे, ये खुद ही फैसले कर लेते हैं। सामा यहकुमून, अल्लाह ताला ने बनाया, कितने बुरे हैं जो तुम फैसले करते हो, कितने गलत फैसले हैं तुम्हारे। ये सूरह कलम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अफा नजअल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, क्या हम मुसलमान को मुजरिम की तरह कर देंगे जो सबमिट कर देता है। मुस्लिम कौन है जो सबमिशन दे दे, जो सबमिट कर दे, उसको उसकी तरह कर देंगे जो क्रिमिनल है, जो मानता ही नहीं बात को। मालकुम, क्या हो गया तुम्हें, कैफ तहकुमून, कैसे फैसले करते हो तुम। दुनिया में तो आप ये नहीं फैसले करते, एक स्टूडेंट है जो सारा साल पढ़ता रहा, आप उसको क्या उतने ही नंबर दे देते हैं जितने जो नालायक है बिल्कुल, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसने कोई कुछ कुछ सही पेपर नहीं दिया। आप जरूर कहेंगे ना दिस इज नॉट फेयर, कहेंगे ना। तो कैसे कह सकते हैं कि वो इंसान जो दुनिया में मेहनत करता रहा, जो दुनिया में अमल की कोशिश करता रहा, उसको उसके बराबर कर दिया जाएगा जो कि नाफरमान था। फिर फायदा ही क्या, फिर यहाँ पे कोई इंसान मेहनत कर रहा है उसका क्या फायदा। देखिए दुनिया समझने एक मंडी है, यहाँ कामयाबी और नाकामी के सौदे हो रहे हैं। इस दुनिया के बाजार में कुछ लोग ऐसे हैं जो जान और माल तो दे देते हैं, ईमान नहीं देते, और कुछ ऐसे हैं जो ईमान का सौदा कर लेते हैं, ईमान बेच डालते हैं। और अल्लाह ताला हर खरीदार पे नजर रखे हुए, हर बेचने वाले पे उसकी नजर है। एक बंदा है जो सूद पे रोटी खा रहा है और दूसरा जो हलाल की रोटी खा रहा है। बजाहिर ये नहीं है कि सूद पे जो रोटी खा रहा है उसकी रोटी कड़वी हो गई और जो हलाल की रोटी खा रहा है उसकी रोटी मीठी हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। लेकिन मानने वाले और ना मानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह क्या बराबर कर देगा इनको। एक के बच्चे के लिए दवाई के भी पैसे नहीं है, दूसरे के बच्चे सैर के लिए यूरोप जा रहे हैं, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या कोई आपके पास कुरान आया है जिसमें ये लिखा हो कि बेअमल और अमल करने वाले को अल्लाह बराबर कर देगा, गाली देने वाले को और दुआ देने वाले को अल्लाह बराबर कर देगा, एक रातों को उठ के रोता है और दूसरा सोने वाला, उसको अल्लाह बराबर कर देगा, शराबी और तहज्जुद गुजार को बराबर कर लेगा, सूद लेने वाले को और सूद के बगैर जिंदगी गुजारने वाले को अल्लाह बराबर कर देगा, जो नजर झुका के रखता है और जो उठाता है नजरें हराम की तरफ देखता है उसको बराबर कर देगा, जो पर्देदार औरत है और जो पर्दा उतार के फिरती है उसको अल्लाह बराबर कर देगा, जो कान गाना सुनने से लज्जत महसूस करते हैं और दूसरे जो कुरान सुनने वाले, बराबर कर देगा क्या, सच्चे और झूठे को बराबर कर देगा। कहीं दिखाओ तो सही, कहीं लिखा हो, कहां से फैसले लाए हो। ये शैतान इतना हमें वो देता है ना तसल्लियां कि बराबर कुछ नहीं होता, ना भी कुछ किया तो कुछ नहीं होता, सब ठीक है। कौन सी वो किताब है जहां ये लिखा हुआ है कि नाफरमान और फरमाबरदार बराबर हो जाएंगे। तो शैतान के धोखे में ना आए। दुनिया में तो सच भी चलेगा झूठ भी चलेगा, दुनिया में तो पर्देदार और बेपर्द बराबर आपको नजर आएंगे, लगेगा कि ऐसे ही एक साथ ही रह रहे हैं, एक ही शहर में, एक ही मुल्क में, एक ही घर के अंदर भी रह सकते हैं। दुनिया में तो हलाल खाने वाला हराम खाने वाला साथ साथ घरों में भी रह सकते हैं, लेकिन आखिरत में फैसले बिल्कुल, दोनों के अंजाम बिल्कुल डिफरेंट है। जो मोमिन है उसका एक एक काम देखो, उसकी रातें देखो, उसके दिन देखो, उसकी डीलिंग्स देखो, उसका खर्च करना देखो, उसकी सारी जिंदगी झुकी हुई है, बिछी हुई है। और जो फासिक है वो जिंदगी के अंदर हदें तोड़ता है, तो क्या फासिक लोग इत्मीनान से बैठे हुए हैं, या हमने भी जन्नत में चले जाना। तो अल्लाह ताला रहमान और रहीम तो है, लेकिन अल्लाह ताला अदल करने वाला भी है। ये आयत बहुत सारी गलत फहमियां दूर कर देती है, बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। जो जन्नत का शौक रखते हैं वो ये देख लें कि उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी, ये एक सौदा है,